नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बॉस एंड बुक्स के नए एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जॉन पॉल डिजोरिया की। जॉन पॉल डिजोरिया अमेरिका के एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और इनकी दो कंपनियां, जिसमें से एक जॉन पॉल मिचेल सिस्टम्स और जो हेयर केयर प्रोडक्ट बनाती है, और दूसरी पेट्रॉन टकीला जो स्पिरिट्स कंपनी है, ये दोनों की वैल्यूएशन 5.1 बिलियन डॉलर है। पर खास बात ये नहीं है, खास बात ये है कि जॉन पॉल अपने 30s में, जब वो 30 साल के लगभग उम्र में थे, तो वो होमलेस हो गए थे, सड़क पे आ गए थे। मेरा कहने का मतलब है, अमेरिका में जो लोग सड़क पे आ जाते हैं उन्हें होमलेस कहा जाता है, अगर आप में से कुछ लोग नहीं जान रहे हो तो होमलेस हो गए थे। और उनका बहुत बड़ा एक बिजनेस प्लान जो था वो फेल हो गया था, और उसके बाद मोस्टली उन्होंने ये होमलेस होते हुए किया। तो मेन खास बात जो स्टोरी की है जॉन पॉल की, वो यही है कि वो होमलेस होने के बावजूद उन्होंने अपनी होप नहीं छोड़ी, और वो एक सक्सेसफुल जो बिजनेस और कंपनीज लॉन्च करना चाहते थे वो लॉन्च करने में सफल हुए। तो आज हम डाइव इन करेंगे, ऐसे कौन से 7 लेसन्स हैं जो मैंने लिए जॉन पॉल की ज़िंदगी से, और मुझे लगता है कि इन लेसन्स की वजह से ही जॉन पॉल एक होमलेस होने के बावजूद भी 5 बिलियन डॉलर तक की कंपनी बनाने में सफल रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं थोड़ी सी बैक स्टोरी कि आखिर जॉन पॉल डिजोरिया होमलेस कैसे हो गए। ये बात लगभग 1980 की। जॉन पॉल डिजोरिया और उनके पार्टनर पॉल मिचेल एक्चुअली में एक हेयर केयर कंपनी खोलने वाले थे, और जिसमें जॉन पॉल ने अपने सारे पैसे लगा दिए थे, और उन्हें ज़रूरत थी एक इन्वेस्टर की, और एक इन्वेस्टर ने उनसे वादा किया था कि वो करीब $5,00,000 उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। जॉन पॉल इतने अश्योर्ड थे कि $5,00,000 तो अब आने ही वाले हैं, तो उन्होंने पैसे अपनी बीवी को दे दिए और बहुत सारे अपने मतलब और लोगों को जिनको भी देना था उनको दे दिए, और अपने पास ज़्यादा कुछ पैसे रखे नहीं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब तो $5,00,000 आ ही जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बदले में वो इन्वेस्टर को करीब 40% शेयर दे रहे थे अपनी कंपनी में। 30% जॉन पॉल रखते, 30% पॉल मिचेल रखते, और 40% वो आदमी रखता जो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला था। पर बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट पे उस आदमी ने अपना माइंड चेंज कर दिया और उसने पैसे इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। जॉन पॉल बिल्कुल ही ज़मीन पे आ गए, उनके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं थे और वो एकदम से कंगाल हो गए। अब जॉन पॉल के पास कोई रास्ता नहीं था। उनकी मदर लॉस एंजलिस में रहती थी, पर वो इतने प्राउड थे कि वो अपनी मदर के साथ नहीं रह सकते थे, या उनको ये बताने में उन्हें शर्म आ रही थी कि मैं काफ़ी बड़ा मेरा नुकसान हो गया या मैं अब कंगाल हो गया। तो बेसिकली वो अपनी मदर के यहाँ गए लॉस एंजलिस में, वहाँ उन्होंने उनसे $300 लिए। अपनी मदर से उन्होंने कहा कि मुझे $300 की ज़रूरत है, और उनकी मदर ने कहा कि तुम तो अच्छा खासा पैसे कमाते हो, तुम्हें $300 की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, ऐसा कुछ करके अपना बहाना बनाया और $300 लिए, और वहाँ उनके साथ लंच किया और फिर वो वहाँ से निकल गए। काफ़ी दिनों तक वो अपनी कार में ही रहे, और पास के रेस्टोरेंट में, जो कि हैप्पी आवर में लगभग 99 सेंट में उन्हें ब्रेकफास्ट दे देता था, और रात में उन्हें करीब $1 में डिनर मिल जाता था, वहाँ पे उन्होंने जाके अपने मतलब दिन गुजारे। $2 एक दिन में कैसे दिन गुजारे जाते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर ये सीखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जॉन पॉल को अक्सर ये गिल्ट रहता था कि वो यहाँ पर खाना खाते हैं पर वो कभी किसी को टिप नहीं करते। तो बाद में जब जॉन पॉल अमीर हो गए, तो वो वापस लौटे उस रेस्टोरेंट में, और जितने भी वेटर्स और वेटरसेस थी वहाँ पे, उन्होंने उनको इतनी अच्छी टिप दी जितनी उन्हें कभी नहीं मिली थी। तो ये कैरेक्टर ट्रेट आपको जॉन पॉल का यहाँ पे समझने को मिल सकता है कि इस आदमी का माइंडसेट किस तरह से काम करता है, कि ये कभी भूलता नहीं कि किसने इसके लिए। तो डाइव इन करते हैं 7 लेसन्स में जो मैंने जॉन पॉल से सीखे। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी भी मदद कर सकते हैं, और इन लेसन्स की बदौलत ही मैं ऐसा समझता हूँ कि वो होमलेस से 5.1 बिलियन डॉलर तक स्केल करने में कामयाब रहे। लेसन नंबर 1, फॉरगिव योर पास्ट, अपने पास्ट को माफ कर दो। बेसिकली ये पहला लेसन इसलिए है कि अक्सर 99% लोग, मेजॉरिटी ऑफ लोग अपने पास्ट में जीते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो मोस्टली अगर आप पास्ट में जीते हुए तो आपको पुराने ख्याल आते हैं कि मैंने ये किया पास्ट में, मैंने वो किया, इस वजह से मैं ये नहीं कर पाया, उस वजह से मैं वो नहीं बन पाया। तो अगर आपके पास्ट में आपसे कुछ गलतियां हुई हैं तो मैं कहूंगा कि आप उन्हें भूल जाएं। जॉन पॉल का पहला लेसन ये है कि अगर वो पास्ट में सोचते रहते कि मेरे पार्टनर ने या इस इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट नहीं किया, या इसकी वजह से ये नहीं हो पाया, और इस वक्त मैं होमलेस हो गया, और मेरे ये और वो, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। तो पहला काम उन्होंने जो किया वो अपने पास के बारे में बिल्कुल ही सोचना बंद कर दिया कि अब यहाँ पे ये जो चीज़ें हो चुकी हैं ये कल का अखबार है, कल का न्यूज़पेपर है, तो इसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं। आप कल के अखबार में जो भी खबर छपी है उसे चेंज तो आप कर ही नहीं सकते, तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता, तो आप उसको रद्दी में भेज देते हैं कल के अखबार को, तो वो बिल्कुल रद्दी ही है। तो आप अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़िए। तो जॉन पॉल ने पहला माइंडसेट ये सेट किया कि पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, मुझे यहाँ से समझना है कि ओके मेरे पास अब इतने ही पैसे हैं, मुझे इतने पैसों में गुजारा करना है और आगे मुझे ये 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 करना है। तो पहला लेसन यही है कि आप अपने पास्ट को भूल जाइए, अगर आपसे कुछ गलतियाँ हुई तो माफ़ कर दीजिए, अपने आप को भी माफ़ करना सीखिए और अपने पास्ट को भूल जाइए। सेकेंड लेसन ये है कि हमेशा हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ, जो भी कुछ काम करो उसमें क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हो, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट हो, चाहे क्वालिटी सर्विस देते हो, चाहे वो डिजिटल सर्विस हो, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो, अगर आप क्वालिटी पे ध्यान देते हो, अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो आपको पहले ही एक एज मिल जाती है अपने कंपटीशन के ऊपर कि यार मेरा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, अब मुझे सिर्फ इसको लोगों तक पहुँचाना है। जॉन पॉल ने क्या किया कि जॉन पॉल ने फोकस किया क्वालिटी पे, उन्होंने जो भी हेयर केयर प्रोडक्ट बनाए, उन्होंने बनाने शुरू किए, उनकी क्वालिटी पे ध्यान दिया और क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए। अब आप सोच रहे होंगे कि जॉन पॉल ने कैसे उन्हें बेचा, तो जॉन पॉल मोस्टली क्या करते थे कि वो डोर टू डोर जाते थे, यानी कि वो जहाँ थे वहाँ से ही उन्होंने शुरू कर दिया प्रोडक्ट को बेचना। उन्होंने जब प्रोडक्ट कुछ बनाया तो वो अपने हेयर केयर प्रोडक्ट, चाहे वो शैम्पू हो कंडीशनर हो, उसको लेके जाते थे सैलून तक, हर सैलून का दरवाज़ा खटखटाते थे, सबको पिच करते थे, और उन्होंने कई साल तक ये काम किया और वहाँ से उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करने शुरू किए। तो अगर आप कुछ भी करते हो, चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, अब मेरा सारा बिजनेस तो ऑनलाइन है, तो मैं आपको इस तरह से बता सकता हूँ कि अगर आप एक ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो, तो कई बार लोग होता क्या कि बस काम चलाओ, ब्लॉग पोस्ट लिख देते हैं, थोड़ा बहुत टाइटल पे ध्यान दे देते हैं, इमेज पे ध्यान देते हैं, कंटेंट पे उतना ध्यान नहीं देते, वहाँ पे उन्हें आलस हो जाता है और उसके बाद वो उसे बाहर पब्लिश कर देते हैं, मतलब अपनी वेबसाइट पे पुश कर देते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि उस पर रिजल्ट्स आने शुरू हों, तो फिर वो मार्केटिंग पे बहुत सारा पैसा खर्चा करना शुरू कर देते हैं। और होता क्या कि मार्केटिंग से क्लिक थ्रू तो आता है, लोग आते तो हैं, बट क्योंकि पोस्ट उतनी अच्छी नहीं होती तो वो उसे पढ़ते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं, लौट जाते हैं, याद ही पढ़ के छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप इनिशियल स्टेज में ही अगर आप रिवाइज करके 1-3 बार अपने प्रोडक्ट को और रिफाइन करते हो, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर जेम्स क्लियर ये कहते हैं, डू इट फर्स्ट टाइम सो गुड दैट यू डोंट हैव टू डू इट अगेन, यानी पहली बार में आप इतना अच्छा काम करो कि आपको बार बार या दोबारा उसे करने की ज़रूरत ना पड़े। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। थर्ड लेसन ये है कि आप सेलिंग बिजनेस में मत रहो, आप सिर्फ सेलिंग के बारे में मत सोचो, आपको रहना है रीऑर्डर के बिजनेस में। अब ये एक्चुअली में इंटरकनेक्टेड है क्वालिटी प्रोडक्ट से, अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओगे तो रीऑर्डर आएंगे। मोस्टली आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप, ये आपका एक रेस्टोरेंट है और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, आप मार्केटिंग पे बहुत पैसा खर्चा करते हो, आपके रेडियो में एड्स आते हैं, आपके बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं, तो मोस्टली आप सेलिंग 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 पे फोकस करते हो, पर आपका खाना उतना अच्छा नहीं है, तो जब लोग इंटर करते हैं वो मार्केटिंग से, एक बार लोग तो आ तो जाते हैं, पर जब वो खाना खाते हैं तो उनको लगता है खाना तो उतना अच्छा नहीं था, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है पर खाना नहीं अच्छा, और मोस्टली क्या है तो फिर वो लोग वापस नहीं आते। पर अगर आपकी मार्केटिंग थोड़ी सी मीडियोकर भी है और आपका खाना बहुत अच्छा है, तो लोग एक बार आते हैं, फिर दोबारा आते हैं, तिबारा आते हैं, और वो 4 लोगों को और बताते हैं आपके रेस्टोरेंट के बारे में कि ये यार, या तो वो खुद आएंगे या फिर 4 लोगों को और साथ में लेके आएंगे। मूवी बिजनेस भी इसी तरह चलता है, वही फिल्में बहुत ज़्यादा पैसा कमाती हैं जो कि लोग दोबारा देखने जाते हैं या 4 लोगों को और बताते हैं। मैं अपना केस स्टडी बताता हूँ, मेरी वीडियो एड एजेंसी है, हम एड्स बनाते हैं और हमारे ज़्यादातर कस्टमर्स वो रीऑर्डर होते हैं, या तो कस्टमर खुद से दोबारा कोई ऑर्डर करते हैं या फिर वो अपने फ्रेंड्स या फैमिली को किसी को बताते हैं कि ये हमने इनसे वीडियो ऐड बनवाया था। एक बात और बताता हूँ, एक बार एक सेमिनार में हमारा ऐड चला था, तो वहाँ पे 30 लोग बैठे थे जो उसके पोटेंशियल कस्टमर हो सकते थे, उनके प्रोडक्ट भी सिमिलर थे, तो उन्होंने उस बंदे से पूछा जो हमारा क्लाइंट था कि आपने ऐड कहाँ से बनवाई है, मैं तो बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने हमारा नाम रिकमेंड किया और उसी दिन हमारे पास 3 क्लाइंट आए और उन क्लाइंट्स ने बताया कि हमने आपकी ऐड यहाँ यहाँ देखी थी। तो मोस्टली आप अगर इस माइंडसेट से काम करोगे कि हमें रीऑर्डर बिजनेस में रहना है न कि सेलिंग बिजनेस में, आजकल मार्केटिंग 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 चारों ओर मार्केटिंग का ही एडवर्टीजमेंट हो रहा है, कोई मार्केटिंग सिखा रहा है, पर आपको फोकस करना है रीऑर्डर में। अगर आप रीऑर्डर में फोकस करेंगे तो आपका बिजनेस लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। लेसन नंबर 4, रिजेक्शन से कभी मत घबराओ। रिजेक्शन लाइफ में सबको मिलता है। जेके रॉलिंग जो फेमस ऑथर है हैरी पॉटर सीरीज की, वो 20 से ज्यादा पब्लिशर्स ने उनकी बुक को रिजेक्ट कर दिया था। शार्क टैंक पे आपने देखा होगा कि जो अपने स्टार्टअप पिच करते हैं और बहुत सारे रिजेक्ट होते हैं, आपने देखा होगा कि बाद में वो अमेजोन पे वो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। तो रिजेक्शन से जॉन पॉल डिजोरिया कभी भी नहीं घबराए। वो मैंने जैसे आपको बताया, वो डोर टू डोर जाते थे, वो हर सैलून का दरवाजा खटखटाते थे, पर हर कोई उनका प्रोडक्ट लेता नहीं था। कई बार लोग पोलाइटली मना कर देते थे, कुछ लोग रूड होते थे, पर वो हारे नहीं। वो डोर टू डोर जाते रहे, क्योंकि उनको यकीन था कि मुझे पता है कि हाँ, सब लोग मेरा प्रोडक्ट नहीं लेंगे पर कुछ लोग ज़रूर लेंगे। तो रिजेक्शन से कभी भी मत घबराओ। इनकी एक और कंपनी है पेट्रॉन टकीला। जब पेट्रॉन टकीला जॉन पॉल शुरू कर रहे थे तो उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज़रूरत पड़ी। तो लोगों ने उन्हें कहा कि क्योंकि आपकी टकीला बहुत महंगी है, तो सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपने लगभग हाथ खड़े कर दिए। उनका कहना था कि आपकी टकीला $37 में यानी $37 में बिकती है, और मोस्टली टकीला का मार्केट जो है वो $14 वाली टकीला ज़्यादा बिकती है, लोग प्रीफर करते हैं ये प्राइस रेंज। तो जॉन पॉल क्वालिटी से नहीं समझौता करना चाहते थे। उनको लगता था अगर वो क्वालिटी से समझौता करेंगे तो उनका प्रोडक्ट बेकार हो जाएगा। उन्होंने फिर जिम बीम, एक डिस्ट्रीब्यूटर थे जो विस्की बनाते हैं, जिम बीम उनके सपोर्ट में आया। उन्होंने कहा कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जॉन पॉल ने 12,000 कंटेनर तैयार किए थे जिसमें से सिर्फ 2,000 बिके, पर जिम बीम ने उनमें भरोसा दिखाया और लगभग कुछ सालों बाद वो 20,000 कंटेनर बेचने में सफल रहे। पर जिम बीम ने कहा कि 20,000 कंटेनर से ज़्यादा हम नहीं बेच पाएंगे क्योंकि इसका दाम बहुत ज़्यादा है। जॉन पॉल को अपने प्रोडक्ट पे भरोसा था, तो जॉन पॉल ने जिम बीम को छोड़ा और फिर सीग्राम के साथ गए। सीग्राम ने बहुत कोशिश की और डिस्ट्रीब्यूट किया, और उनका बेस्ट था 70,000 कंटेनर बेचने का। फिर जॉन पॉल ने सोचा कि क्यों ना हम खुद डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करें। तो जॉन पॉल ने सीग्राम से अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा और वो खुद डिस्ट्रीब्यूट करने गए। तो उनका जो बेस्ट था वो लगभग 4 मिलियन कंटेनर एक साल में बेचने का। तो आप सोचिए कि जब उन्होंने शुरू किया था तो वो 2,000 कंटेनर फर्स्ट ईयर में ही बेच पाए थे, और वहाँ पे लोग उन्हें कह रहे थे कि ये आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा, आपकी टकीला नहीं चलेगी क्योंकि ये बहुत महंगी है। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों तक वो पहुँची और लोगों को लगा कि हाँ नहीं, ये अच्छी चीज़ है, इसका मतलब ये रिफाइंड है, ज़्यादा बेहतर है। तो लोग एक्सपेंसिव प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने को तैयार होते हैं, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं क्योंकि उन्हें भी अच्छी चीज़ें पसंद हैं। और जॉन पॉल को ये पता था कि उनका प्रोडक्ट एक बार लोगों तक पहुँचेगा तो लोगों को अच्छा लगेगा तो लोग खरीदेंगे। तो इस तरह से जॉन पॉल ने शुरुआत की थी 2,000 कंटेनर से, पर धीरे धीरे करते करते वो लगभग 40 लाख कंटेनर एक साल में बेचने में सफल रहे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्जिन है। तो इससे समझ में ये आता है कि रिजेक्शंस इनिशियली आपके पास आएंगे, आपको अपने माइंडसेट को ये पक्का करना पड़ेगा कि यार ठीक है, रिजेक्शन आएंगे तो मैं उसे हैंडल करूँगा, कोई बात नहीं, फीडबैक आएगा तो मैं उसे पॉजिटिवली लूँगा। पर अगर आप अपने प्रोडक्ट में ट्रस्ट करते हो, आप अपनी सर्विस में ट्रस्ट करते हो, तो इनिशियली वो कस्टमर्स बाद में आने शुरू हो जाएंगे। लेसन नंबर 5, री इन्वेस्ट इन योर प्रोडक्ट। जब आप एक बार बिजनेस करना शुरू करते हो और आपको कुछ पैसे आने शुरू हो जाते हैं तो आप अपनी लाइफस्टाइल मत चेंज करो, आप महंगी चीजें खरीदना मत शुरू करो, आप गाड़ियां, महंगे वॉचेस, इसका शौक मत डालो। आप पहले अपने जो इनकम है उसको वापस से रीइन्वेस्ट करना शुरू करो अपने बिजनेस में, ताकि बिजनेस और ग्रो हो सके। जॉन पॉल बहुत सालों तक अपार्टमेंट में रहे और उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। उन्होंने अपना पहला एम्प्लॉई लगभग 1.5-2 साल बाद रखा था, क्योंकि वो बिल्कुल ही एडिशनल पैसा नहीं खर्चा करना चाहते थे। वो हर पैसा अपने बिजनेस को स्केल अप करने में और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में वो इन्वेस्ट कर रहे थे। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, मैंने भी यही गलती की है अपनी लाइफ में, कि जब मैं इनिशियली स्टार्ट कर रहा था तो मुझे जब पैसे आने लगे तो मैं जो है महंगी चीज़ें खरीदने लगा। बाद में मुझे समझ में आया कि इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो चीज़ें मेरे लिए सिर्फ चीज़ें ही रह गई बाद में। तो मुझे ये समझ में आया कि री इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी बिजनेस में वापस से अपने पैसे को। लेसन नंबर 6, अपने एसोसिएट्स को ट्रेन करना सीखिए। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग आप कि प्रोडक्ट को आगे पुश कर रहे हैं उनको आप ट्रेन करिए, और जितने अच्छे से आप उन्हें एजुकेट करेंगे, जितने अच्छे से आप उन्हें ट्रेन करेंगे, उतने अच्छे से वो आपके प्रोडक्ट को और लोगों को समझा पाएंगे और लोगों को तक पहुंचा पाएंगे। जॉन पॉल का ये सबसे स्मार्ट मूव था। जॉन पॉल ने क्या किया कि जॉन पॉल ने जितने भी हेयर ड्रेसर्स थे उन सब के लिए एक ट्रेनिंग स्कूल खोला और उन सब को वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते थे। जो शुरुआती हेयर ड्रेसर थे उनको वो और परफेक्ट बनाते और स्मार्ट बनाते और उनको वो अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझाते, एजुकेट करते उसके बारे में, और वो ये भी सिखाते कि इसके बारे में उनको कस्टमर को भी एजुकेट करना है। इससे होता क्या था कि जॉन पॉल ये समझते थे कि मेरे प्रोडक्ट को आगे पहुंचाने वाले हेयर ड्रेसर्स ही हैं जो सैलून में मेरे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, और अगर ये अच्छे से ट्रेंड रहेंगे, अच्छे से एजुकेट रहेंगे, तो ये ज़्यादा अच्छे से मेरे प्रोडक्ट को पुश कर पाएंगे। एक समय पे जॉन पॉल के पास 850 हेयर ड्रेसर्स थे जिन्हें वो ट्रेन कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स में, और इन्हीं हेयर ड्रेसर्स की बदौलत ही उनका प्रोडक्ट इतने ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाया था। जॉन पॉल ये बहुत अच्छे से समझते थे कि ये लोग हैं, ये वो चैनल है जो मेरे प्रोडक्ट को आगे पहुंचाएगा। तो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में, आपके पास एफिलिएट्स हैं, तो अपने एफिलिएट्स को बहुत अच्छे से ट्रेन करिए, उनको ज़रूरी मटेरियल दीजिए जिससे कि वो आपके प्रोडक्ट को आगे पहुँचा पाएँ। सातवां लेसन है हैप्पी एंड हेल्दी। एक बार जॉन पॉल का जो बच्चा था वो स्कूल गया तो सबने उससे, और बच्चे कहने लगे यार तुम तो बड़े अमीर हो, तो अपने घर आया और उसने कहा कि डैड, सब बच्चे कह रहे थे मैं तो बहुत अमीर हूँ, ये अमीर होना क्या होता है, मतलब आप बताइए। तो उसके डैड यानी जॉन पॉल ने उससे पूछा कि क्या तुम हैप्पी हो, उस बच्चे ने कहा हाँ, क्या तुम हेल्दी हो, उसने कहा हाँ, तो कह अगर तुम हैप्पी और हेल्दी हो तो तुम अमीर हो, और जाके उन बच्चों से कहना कि अगर तुम भी हम लोगों की तरह हैप्पी और हेल्दी हो तो तुम भी हमारे जितने ही अमीर हो। अब ये फिलॉसफी जॉन पॉल ने अपने बच्चे को इनिशियल स्टेज में ही समझा दी थी, पर बहुत लोग इसको बहुत बड़े होने के बावजूद भी नहीं समझ पाते। उनको लगता है कि पैसे होने से ही इंसान काफ़ी अमीर होता है और पैसा ही जो है इंसान की सक्सेस का मयार है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो पर अगर इसी एनालॉजी को हम उल्टा करें तो हैप्पी और हेल्दी का उल्टा होता है सैड और सिक। तो अगर आप सैड और सिक हो और आप करोड़पति हो तो आप कितने अमीर आप अपने आप को समझ सकते हो। इनफैक्ट अगर आप करोड़पति नहीं हो और आप एक एवरेज गाय हो, पर आप डेली टू डेली हैप्पी और हेल्दी भी हो साथ में, तो आप ज़्यादा खुश रहोगे। और पैसे कमाने का अल्टीमेट गोल यही है कि इंसान खुश रह सके। ये एक बोनस लेसन है। जब जॉन पॉल से पूछा गया कि सफलता का क्या मतलब है आपके लिए, तो जॉन पॉल ने कहा कि जो भी आप करते हो वो आप कितने अच्छे से करते हो, कितना बेस्ट देते हो, अगर आप वो देने में कामयाब हो गए हो तो आप सफल हो। और जॉन पॉल ने ये भी कहा कि जो भी आप करते हो अगर आप कितने अच्छे से कर रहे हो जिस वक्त आपको कोई ना देख रहा हो। मोस्टली होता क्या है कि जब कोई हमें देख रहा होता है या हम किसी ऑडियंस में होते हैं तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, पर जब हम अकेले होते हैं तो हम आलस में आ जाते हैं, हमको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बट वही मेन इम्पॉर्टेंट टाइम है जब आप अपना बेस्ट उस समय देने की कोशिश करते हो जब कोई आपको देख ना रहा हो। दोस्तों, जॉन पॉल के इन 7 लेसन से जो मुझे बेसिक फिलॉसफी समझ में आई है जॉन पॉल की, और जिस फिलॉसफी ने उनको होमलेस से $5 बिलियन तक की कंपनी बनाने में मदद की, वो मुझे ऐसा लगता है कि जॉन पॉल का पूरा फोकस था क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में। उन्होंने आसपास देखा और उन्हें लगा कि यार ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं है और क्या मैं इसे बेहतर कर सकता हूँ, तो उन्होंने फोकस किया उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में जो प्रोडक्ट उस वक्त अवेलेबल थे। क्योंकि वो क्वालिटी प्रोडक्ट पे इतना फोकस कर रहे थे तो वहाँ पे उन्हें रीऑर्डर मिले, रिजेक्शंस को उन्होंने हैंडल किया और रीऑर्डर के साथ साथ उनकी धीरे धीरे ग्रोथ हुई। उन्होंने ट्रेनिंग दी लोगों को ताकि वो उनके प्रोडक्ट को और लोगों तक पहुँचा सकें। तो कोर फिलॉसफी जो जॉन पॉल की है कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। तो अगर आप किसी बिजनेस में या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि क्या लास्ट टाइम आपने कब कोई पिज्ज़ा खाया तो आपको लगा कि ये अच्छा नहीं, इसमें ये इम्प्रूव होना चाहिए, या आप कहीं पे गए और आपको लगा कि यार यहाँ पे ये चीज़ मिसिंग, अगर ये होता तो बहुत बढ़िया होता, या लास्ट टाइम आपने कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जो आपको लगता है कि यार इसमें ये चीज़ मिसिंग है। तो अगर आप कहीं पे कोई क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकते हो, कहीं पे कोई कुछ इम्प्रूव करके एक नया वर्जन उसका बना सकते हो, तो वो आपका एक बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया हो सकता है। थैंक यू वेरी मच हमें सुनने के लिए, और अगर आपको ये पसंद आया, आपको लगता है कि इससे आपको कुछ वैल्यू मिली है, मेरे पॉडकास्ट को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसे रेट कर सकते हैं जहां पे भी आप सुन रहे हैं, और मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।